Шилэнж. Шилэнж. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत जो विषय हमने चुना है वो है हिंदी के वैश्विक विकास में प्रकाशनों का योगदान, और इस विषय पर बातचीत करने हेतु हमारे मध्य में आए हुए हैं डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी। डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी के बारे में दो शब्द। आप हिंदी लेखक संघ के मान्य प्रधान हैं और आप कई सालों तक मंत्री पद पर रहे। आप सालों से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। आपने कविता, कहानी, नाटक, लघु कथा, इतिहास, जीवनी, हाइकू आदि और महाकाव्य विधाओं में अनेक कृतियों आपने तैयार की हैं। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आपके एक विराट हिंदी दस्तावेज का लोकार्पण हुआ, जिसका शीर्षक है हिंदी वर्ल्ड ओवर, यानी विश्व भर में हिंदी। इसके अलावा आपकी लघु कथाएं हाल में छपी हुई है, जिसका शीर्षक है लघु कथा मंजूषा, और अब तक आपकी 17 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। डॉक्टर इंद्रनाथ भोला जी नमस्ते।
देवव्रत सिरतन जी, बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, और साथ साथ मैं विश्व हिंदी सम्मेलन को भी धन्यवाद देता हूँ।
तो डॉक्टर भोला जी, आइए हम विषय पर बातचीत करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन में जो परिवर्तन आता है, प्रवृत्ति में जो परिवर्तन आता है, उसमें आप लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य रहती है। इस पर आप क्या विचार कहना चाहेंगे?
देखिए, लेखन जो है ये एक बहुत सशक्त विधा है। लेखन सरल नहीं है जितना कि हम समझते हैं। बहुत लोग लिख देते हैं, कहानी लिख देते हैं या कविता लिख देते हैं या निबंध लिखते हैं, तो सोचते हैं कि मैं लेखक बन गया और वो उनका जो साहित्य जो है सृजन होने लगा है। लेकिन बात यही नहीं है। इसमें जो साहित्य का जो सृजन हुआ करता है उसमें बहुत गहराई पर जाना पड़ता है, बहुत शोध कार्य करना पड़ता है, बहुत लिखने का जो प्रयास है, लिखने के जो कला है जी, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, तब जाकर के कुछ लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो बैठे हम लोग लिख देते हैं। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं लेकिन वो व्यर्थ की चीज़ हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो आप जैसे कर रहे हैं, तो लेखन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि उस पर गहराई पर जाए, उस पर उसका अध्ययन करें। बिन अध्ययन किए बिना लिख भी नहीं सकते हैं। बहुत लोग लिखते हैं लेकिन जो तत्व होता है, साहित्यिक तत्व है, जिसे अनभिज रह जाते हैं,
यानी उसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी होनी चाहिए।
ये वैसे ही है। देखिए, खुद मैं अपने कह दूं
जी हाँ,
जब हिंदी लेखक संघ के मंत्री बना था
जी,
तो मैंने सोचा कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ ठीक है कि नहीं है।
अच्छा।
तो मैंने क्या किया, भारत से सराहनपुर लेखक प्रसन्न महाविद्यालय से मैंने वहाँ पर कोर्स किया।
अच्छा।
लेखन का मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, तब लिखना मैंने आरंभ कर दिया इतना।
अच्छा। कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो स्वतः सुखाई के लिए लिखते हैं, कुछ अन्य लेखक होते हैं जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिखते हैं।
हाँ, स्वतः सुखाई की जब बात कर रहे हैं
जी,
पहले जो है मैं जानता हूँ, पहले अनेक लेखक हुए थे जिन्होंने स्वतः सुखाई के लिखा था। उनके कभी विचार नहीं था कि इसको मैं पुस्तक का रूप दूँ।
अच्छा।
क्योंकि उस समय एक तो पहली बात यह है कि उस समय में प्रकाशन की सुविधा नहीं थी। लिखेंगे तो वो जो है उस प्रकाशित नहीं कर पाते थे
जी।
लेकिन सोचते थे कि मैं लिखूंगा अपने के लिए,
मन को खुश करने के लिए,
मन खुश करने के लिए, अपने विचारों को मैं गहनता लाने के लिए वो लोग लिखा करते थे। और यही चाहते थे कि मैं जो लिखूँ, जो स्वान सिखाई के लिखूँ, मुझे इससे आनंद मिलेगा।
अच्छा।
खुद में बैठ के मैं सो करके उठूँगा, बैठूँगा और उसको पढ़ूंगा तो लगेगा कि मैंने कितना ज्ञान अर्जित किया है।
मगर ये जो लेखन है दूसरे लोगों तक पहुंच नहीं पाता था उस समय।
हाँ, लेकिन यह है कि ऐसे पहुँच एक बहुत ऐसे जो बोल रहे हैं कि वहाँ एक कुछ लेखक थे जिनकी पहुँच नहीं होती थी वहाँ तक जाने के लिए, हाँ। उतना लेखन करने के लिए, लेकिन प्रयास तो करते थे
जी।
प्रयास करते थे कि भले मैं उस स्तर पर नहीं हूँ लेकिन मैं कुछ लिखूँ और कुछ अपने आप को भी संतुष्टि प्राप्त करें।
मतलब कि लिखने के बाद उसे प्रकाशित करवाना चाहिए।
हाँ, अब ये हुआ कि आगे चल करके कि कुछ लेखक हुए जिनकी रचनाएं दराज में पड़े थे।
अच्छा,
कितने पुस्तकें दराज में पड़ी थी
जी।
जब सुविधा होने लगी तो उन्होंने सोचा नहीं बल्कि मैं इसका प्रकाशन करूं। तो इस प्रकार से कुछ लोगों ने अपने पुस्तकों का प्रकाशन किया और सामने आए लेखक के रूप में।
तो इस रूप में जो कुछ वो लिखते हैं दूसरों तक पहुंच जाता है।
हाँ,
इस तरह से
यह है कि जब हम लिखते हैं खुद हम लिख देते हैं, जब हम प्रकाशित कर देते हैं सौभाग्य ये हो जाता है कि प्रकाशित होने पर वो रचनाएं अन्य लोगों के पास पहुंच जाती है और वे लोग जो हैं उन रचनाओं को पढ़ते हैं और मन अपना अपना मन तो खुश होता ही है और दूसरे लोग पढ़ते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ मैंने जो प्रयास किया था वो व्यर्थ नहीं गया।
तो हिंदी साहित्य या हिंदी भाषा के विस्तार में प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है, आप कहाँ तक इससे सहमत हैं?
ये बहुत आवश्यक बात है आपने जो कही। पुस्तक तो हम लिख लेते हैं, अगर प्रकाशन न हो तो व्यर्थ हो जाता है। पहले कितने देखिए कि पहले कितने लेखक हुए हैं जिनकी रचनाएं छपी नहीं, लेकिन अब जो है कुछ लोग जो हैं जो लिख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरी रचनाएं छपे और पुस्तक में छप रही हैं। लेकिन मैं तो उन सबको ये कहूँगा कि जो छपवाना चाहते हैं बहुत ठीक है आप लोग छपवाइए हुए, लेकिन यह है कि पहले छपाने से पहले उसका संपादन करवाइए, उसका उस पर जो है किसी व्यक्ति को दिखाए कि रचना अस्थिर है कि नहीं है, जो कमजोरियाँ हैं उसमें गलतियाँ हैं तो सुधार करेंगे। जब प्रकाशित वो पुस्तक होगी तो लोग देखेंगे बोले हाँ पुस्तक में
रेफरेंस हो जाएगा।
हाँ, दिखते हैं ना।
तो डॉक्टर भोला जी, कृतियों के प्रकाशन से किस रूप में हिंदी को बढ़ावा मिलता है या विस्तार मिलता है, किस रूप में?
हाँ देखिए, हिंदी जब लिख देते हैं तो इसका इसका बढ़ावा इससे सर मिल जाता है कि ये जो देखिए मोसस में ये हो गया है कि इतने लेखकों की रचनाएं जो छपती हैं वो पाठ्य पुस्तक में भी संकलित हो रही हैं।
अच्छा,
तो ये गौरव की बात है। अब ये हुआ कि एक तो उसकी छप गई और दूसरी जो है पाठ्य पुस्तक में निर्धारित हो गई, उनके कुछ कहानियाँ कविताएँ हैं या उनका जो इतिहास है, तो ये सब हो जाता है तो लेखक को तो प्रोत्साहन मिलता ही है और जो साहित्य का जो सृजन हो रहा है उसमें उसकी उसको भी नाम आ जाता है।
ये तभी हो सकता है जब वो कृति या जो रचना स्तर की चीज़ होती है।
हाँ, स्तर की रचना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए आज मैं तो हमेशा मैंने एक पुस्तक में बात कही है और मैंने कहा है कि आज के जो रचनाएं जीती हुई हैं और आगे से जो रचनाएं हुई हैं उसको ऐसे नहीं करें, ऐसे कुछ संपत्ति बने, समालोचक बने
जी,
समालोचक बने और उन रचनाओं को उन पुस्तकों पर गहराई से अध्ययन करें और क्या कमजोरियाँ उसमें, क्या दोष है उसमें, क्या ये साहित्यिक है उसका रचना है कि साहित्यिक पुस्तक के रूप में स्थान मिल सकता हो। तो यह है कि ये जो है हो जाता है सब इसके बारे में हम जब तक इस पर ध्यान नहीं देंगे, आज के समालोचक ध्यान नहीं देंगे तो हमारे स्तर की जो पुस्तकें नहीं आएंगी। तो आगे चल करके देखिए आज मोसस की जो पुस्तकें हैं विदेशों में जाती हैं, अनेक देशों में वहाँ के लोग पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अरे मोसस में इस तरह की रचनाएँ हो रही हैं। कुछ लोग बोलते हैं बहुत स्तर की रचना है, अगर यहाँ पर छपे और स्तर की रचना नहीं तो भारत के लोग भी यानी देशों के लोग भी कहेंगे कि रचना भद्दी हुआ करती है।
हाँ बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं कि वो स्तर की चीज़ होनी चाहिए, तभी तो हिंदी साहित्य में विस्तार आएगा, नई बातें सामने आएगी, नए लोग होंगे और कुछ लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आप देखिए आजकल इंटरनेट आईटी आदि के आगमन से हर क्षेत्र में सुविधा मिल गई है, पुस्तकों के प्रकाशन से बहुत तेजी की स्वीकृतियाँ पाठकों तक पहुँच जाती है, इस बारे में आप क्या कहना?
देखिए बहुत से लोग हैं पुस्तकें लिखते हैं छपवाते हैं लेकिन खर्च बहुत लगता है, खर्च लगने से यह है कि पुस्तकें कम छप पा रही हैं और दूसरी बात यह है जब पुस्तकें आ भी जाती हैं तो खपाने में कठिनाई होती है, जबकि आज जो इंटरनेट के माध्यम से और जो अभी जो जो सुविधा आपने बताया कि इस तरह से हम घर बैठे बहुत से ये बहुत सी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, बहुत से लेखकों को जान सकते हैं, प्रकाशकों को पहचान सकते हैं,
प्रकाशकों से बातचीत संपर्क भी हो सकता है।
हाँ, संपर्क हो सकता है, और इस प्रकार से हमारा साहित्य जो है वो दमदार होता है।
बिल्कुल,
क्योंकि इस प्रकार से और अन्य अन्य देखो आज मोसस के लेखक जो हैं विदेशों में प्रसिद्ध, खुद मेरे मुझे ही देखिए, मुझे अनेक भारत के सात ये बड़ी बड़ी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है। कि क्यों, किस लिए, कि यह है कि हमारी पुस्तकें पहुंची वहां पर, तो इसके जो माध्यम जो अभी जो सरल माध्यम जो है,
हाँ जी,
इससे अधिक से अधिक लेखक दुनिया में प्रसिद्ध हो सकते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ी जा सकती हैं और दूसरे देशों के रचनाएं हम पढ़ सकते हैं
जी।
और दूसरी बात यह है, मैं ये कहूँगा कि आज जो हम मतलब हिंदी में लिख रहे हैं
जी,
केवल हमें यहीं तक रुकना नहीं है, आज अनेक देशों में हमारे हिंदी साहित्य का अति हो रहा है अनुवाद
दूसरी,
ये बहुत आवश्यक बन गई है। और जब अनुवाद होने के केवल हिंदी के पाठक नहीं, अन्य भाषा लोग जो है वो हमारी पुस्तकों को
वैश्विक चीज बन जाती है, वैश्विक चीज बन जाती है, दूसरे देशों में चली जाती है ये कृतियाँ, जहाँ पर हमने कभी सोचा नहीं था। तो इसका जब अनुवाद होता है तो पाठकों की संख्या बढ़ जाती है
और घर जाति के लोग भी आपके साहित्य से परिचित हो जाते हैं, हिंदी साहित्य के परिचित हो जाते हैं। भारत में कई जगहों पर इस प्रकार से हुआ है, भारत के लेखक जो आज प्रसिद्ध हो गए हैं ये अनुवादों के माध्यम से।
एक साहित्यकार व एक लेखक के लिए उसकी क्या भावना उत्पन्न होती है जब उसकी रचना छपकर निकलती है और बाजारों में आ जाती है, क्या भावना रहती है?
ये तो बहुत बड़ी बात है, हर एक लेखक तो यही चाहता है ना कि उसकी रचना छपे, लोग पढ़ें और उसका उसका मान बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, साहित्य में उसका नाम हो, उसकी चर्चा हो, और उस पुस्तक जो है वो लोग के हाथों में पढ़े, देश विदेश में जाए, वहाँ के लोग उनसे परिचित हों, तो ये तो गौरव की बात है। मन जो है हमारा आनंदित हो जाता है, मन जो हमारा प्रफुल्लित हो जाता है कि हमने जो प्रयास किया उसका प्रतिफल जो है जो बहुत सृजनात्मक और फलदायक हुआ है।
कुछ ऐसे लेखक भी होते हैं जो पुस्तकें लिख लेते हैं मगर प्रकाशन नहीं कर पाते हैं, ऐसे लेखकों के लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, कुछ ऐसे लेखक हैं बहुत अच्छी रचनाएं कर पाते हैं लेकिन गरीबी के कारण या हो सकता है कि धन अभाव के कारण प्रकाशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हो जाता है तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे देखिए विश्व हिंदी सचिवालय है, हिंदी संगठन है और लेखक संघ ही है, हम लोग कई पुस्तकें छाप रहे हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा इन संस्थाओं से कि आप लोग हिंदी संगठन या विश्व हिंदी सचिवालय लेखकों की रचनाओं को ऐसा प्रबंध करें कि लेखकों की रचनाओं के संकलित रचनाएँ छपें और उनको भी मौका मिले। और दूसरी बात यह है कि जो लेखक नहीं लिख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री की ओर से
जी
एक अनुदान दिया जाता है, लेकिन यह है कि आपकी रचना स्तरीय हो तो आपके नहीं छप पा रही है तो वहाँ संपर्क करें, अगर हो सके तो वे लोग आपको वो सहयोग देंगे और आपकी रचनाएं सामने आ सके, पुस्तकें छप सकेंगी।
प्रिय श्रोताओ, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है, हमें पूरी आशा है कि आपके इस कार्यक्रम से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि आज का ये कार्यक्रम उसके लिए जो विषय था वो था हिंदी के वैश्विक विस्तार में प्रकाशन का योगदान। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से आप डॉक्टर इंद्रदीप भोला जी को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद है। अगला कार्यक्रम लेकर हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। नमस्ते।
देवव्रत श्रीतन जी, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया, साथ साथ मैं हिंदी विश्व हिंदी सचिवालय को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस अवसर पर और इस मौका दिया कि मैं आकर के दो शब्द अपना सुनाऊँ
जी। बहुत
धन्यवाद।
धन्यवाद आपको भी।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।